सोच की आजादी से सृजन तक, बदलाव, जिज्ञासा और जीवन की सरलता, एक वैज्ञानिक की अनकही दास्तान। साल था 1961, जगह राजस्थान का ऐतिहासिक शहर अजमेर। वहीं एक बच्चा जन्मा जिसके जीवन की शुरुआत ही बदलाव से हुई। पिता थे सिंचाई विभाग में सरकारी इंजीनियर, ईमानदार इतने कि हर साल 1.5 साल में तबादले हो जाते, और इसी कारण वह बच्चा 11 साल की पढ़ाई में 8 स्कूल बदल चुका था। किसी साल हिंदी माध्यम तो अगले ही साल अंग्रेजी, कहीं सह शिक्षा विद्यालय, कहीं सिर्फ लड़कों का, कभी छोटा कस्बा, कभी जयपुर जैसे बड़े शहर। यह बदलाव किसी के लिए संकट हो सकता है, लेकिन आशुतोष शर्मा के लिए यह बन गया परिवर्तन को अपनाने की कला।
तो आजकल जो हमारा ज़माना है और आने वाला जो ज़माना है, उसमें नेगोशिएटिंग चेंज जो है वही सबसे बड़ी स्किल है। तो स्किल ये नहीं है कि मुझे क्या आता है, क्योंकि स्किल ये है कि मुझे कल क्या सीखना है, नई चीज़ जो कि मैं सीख सकता हूँ। तो ऐसा है कि एक साल में राजस्थान बोर्ड में होऊंगा हिंदी मीडियम में, दूसरे साल में सेंट्रल बोर्ड में होऊंगा इंग्लिश मीडियम में, कभी कोएड स्कूल है, कभी बॉयज़ स्कूल है, कभी छोटा डिस्ट्रिक्ट है, कभी जयपुर है। तो इस सब से कुल मिला के नए नए फ्रेंड हैं, उन सब के अलग अलग बैकग्राउंड हैं, अलग अलग तरह के टीचर हैं, अलग अलग एक्टिविटी होती हैं, कभी हॉकी खेलते हैं, कभी नाटक करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो इतना रिच और इतना इम्पॉर्टेंट है कि लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना हमें बदलाव रहे स्कूल के अंदर, तो अच्छा नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि यही जो फाउंडेशन है वो सबसे अच्छी फाउंडेशन है।
यह बदलाव मेरे लिए बोझ नहीं थे, वे कहते हैं, बल्कि यह मेरी सबसे पहली पाठशाला थी, विविधता को अपनाने की, बदलाव से डरने के बजाय उसे तलाशने की। हर नए स्कूल में नए दोस्त, नई बोलियां, नए खेल, नई किताबें, कभी हॉकी, कभी अभिनय, कभी जासूसी उपन्यास, तो कभी दर्शन शास्त्र की किताबें। स्कूल की परीक्षा उनके लिए अंतिम लक्ष्य नहीं थी, वे कहते हैं। कई बार मुझे सेकंड डिवीजन मिला, लेकिन किसी ने नहीं टोका, न माता पिता ने, न दादा दादी ने, मुझे बस सीखने की आजादी चाहिए थी।
जिज्ञासा के पन्ने, एक खोजी आत्मा की कहानी।
उस दौर में न अमेजन था न किंडल, पर थी एक मोहल्ले की बुक रेंटल दुकान, जहां वो और उसके दोस्त एक दूसरे से किताबें अदल बदल कर हर 2 दिन में नई दुनिया खोज लेते थे। मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से किताबें उधार लेता था, फिजिक्स की, दर्शन की, एडवांस साइंस की, कभी जेम्स हैडली चेस तो कभी हिंदी के जासूसी उपन्यास। जेब में पैसे नहीं थे, पर मन में एक ललक थी हर बात को समझने की। लोग पूछते थे, ये सब पढ़कर क्या होगा, परीक्षा में तो नहीं आएगा? मैं कहता था, परीक्षा तो हो गई, अब जिंदगी को पास करना है। मेरे लिए किताबें सिर्फ अंक नहीं थीं, वो सवाल थीं, सपने थीं और कभी कभी आईने भी, जिनमें मैं खुद को ढूंढता था। यही जिज्ञासा उसे ले गई काफ्का, कैमू, सार्त्र और मार्क्स तक। कहते हैं, इंसान की पहली पसंद ही उसका असली परिचय होती है। 16 साल का एक लड़का जो वैज्ञानिक बनने की राह पर था, लेकिन उसका दिल खींच रहा था दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की ओर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी में एडमिशन लेने का मन बना ही चुका था। किताबें, विचार, अस्तित्व के प्रश्न, सब कुछ खींच रहा था उसे एक गहराई की ओर। पर उम्र कम थी और दुनिया बड़ी। रिश्तेदार, पड़ोसी, टीचर्स, सभी ने कहा, फिलॉसफी, फिर तो टीचर ही बनोगे। किसी ने नहीं कहा कि सोचने का हुनर जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों में काम आता है, कि दर्शन शास्त्र विज्ञान को एक नई दृष्टि दे सकता है। देखिए, कॉलेज में आप कुछ भी पढ़ते हैं, पर कैरियर, वो तो आपका अपना चुनाव होता है। कैरियर इज इक्वल टू कॉलेज का कोर्स, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। और फिर जैसे किसी मोड़ पर जीवन ने दिशा बदली। 1977, उम्र महज 16 साल, लेकिन सोच और समझ उम्र से कहीं बड़ी। आशुतोष शर्मा ने IIT कानपुर में दाखिला लिया, एक ऐसी दुनिया जहां विज्ञान तो था पर सोच की आजादी भी, जहां हर प्रयोगशाला, हर लेक्चर सिर्फ अंकों के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए थी। ये वो समय था जब IIT में 5 साल का कोर्स होता था, ग्यारहवीं के बाद सीधा जीवन की सबसे कठिन बट एनलाइटनिंग यात्रा में प्रवेश। पर यहां भी वो अपनी फिलोसॉफिकल सोच को साथ लेकर आए। विज्ञान के सूत्रों के साथ वो जीवन के प्रश्नों के उत्तर भी खोज रहे थे। मैं 16 साल की उम्र में IIT कानपुर पहुंचा। वो एक बिल्कुल अलग अनुभव था, स्कूल की पढ़ाई से बिल्कुल जुदा। यहां हमें निरंतर सीखने के लिए मजबूर किया जाता था। क्लास में गए और उसी वक्त सर ने कह दिया, सरप्राइज क्विज, कभी 30% मार्क्स की वेटेज के साथ। यहां शिक्षा का मतलब सिर्फ सिलेबस नहीं था, यहां शिक्षा का मतलब था लर्निंग हाउ टू लर्न। हमारे पास कोई फिक्स्ड क्यूरिकुलम नहीं था, हर प्रोफेसर अपने कोर्स में नया कुछ जोड़ सकता था और यही तो असली शिक्षा थी, हर बार बदलती दुनिया के साथ खुद को बदलने की कला। पर इस सीख का एक और पहलू था, माइंड की लर्निंग, जिसका पाठ्यक्रम कोई किताब तय नहीं करती, जिसे समझने के लिए इंट्रोस्पेक्शन चाहिए और सवाल पूछने का साहस। रिलेटिव ग्रेडिंग, सरप्राइज टेस्ट, डायनामिक कोर्स वर्क, हर चीज ने उन्हें सिखाया कि शिक्षा अंकों की नहीं समझ की होती है। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने हमेशा सोचा कि जिंदगी सिर्फ डिग्रियों से नहीं बनती, वो बनती है उस सोच से जिससे हम दुनिया को देखते हैं और खुद को भी। इस तरह दर्शन और विज्ञान का संगम बना प्रोफेसर आशुतोष शर्मा का आधार। एक ऐसा सोचने वाला वैज्ञानिक जिसकी प्रयोगशाला में सिर्फ केमिकल नहीं बल्कि विचार भी उबलते थे। पहले साल डी ग्रेड मिला क्योंकि उस विषय में मन नहीं था, पर मैं सो नहीं रहा था, मैं पढ़ रहा था दुनिया, मनुष्य, समाज और अपने आप को। आशुतोष शर्मा ने अपने नंबरों के लिए अध्यापकों को दोष नहीं दिया, ना समाज की लकीर पीटी। आशुतोष शर्मा के लिए आजादी मतलब जिम्मेदारी के साथ अपना रास्ता चुनना। फिर वही लड़का जिसे मनमौजी कहा जाता था, IIT कानपुर में 9.3 GPA लेकर अपनी क्लास में दूसरा स्थान हासिल करता है।
फर्स्ट ईयर इन IIT कानपुर, आई हैड लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग लिटरेचर, एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर, साथ काफ्का, कामू, इवन कार्ल मार्क्स, एवरीथिंग, होल लॉट ऑफ लिटरेचर फ्रॉम हेमिंगवे टू एवरीथिंग एल्स। सो आई नीडेड टाइम फॉर दैट। नाउ आई सेड, वेल, इंस्टेड ऑफ, यू नो, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, वेस्टिंग 4 hours इन अ लैब, वी आर डूइंग सम लेथ वर्किंग, आई डोंट नो, पैरेलल लाइंस और समथिंग लाइक दैट। लुक, आई एम नॉट मिनिमाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। ईच person has to decide what is important. It is not a question of towing the society's line. If you are really that confident and convinced that this is what you want to do, you must by all means go ahead and do it, but take responsibility. I never blamed my teachers if I got a D. I never said that that others should not do it. It is not, you're not the standard for other people, you are a standard for yourself, and you must have the confidence to toe the line that you believe in. So finally I did graduate with a respectable grade point average of 9.3 out of 10, which made me number 2 in my class in IIT Kanpur, which was fairly good. But my first year, I recall very clearly 7 point something, I got a D, because I just had very little interest in what I was doing. And so I was doing something else. I was sitting in library, I had interest in art, and I did a lot of art at that time. I wrote poems, and basically I learned everything about this world and life. It opened up a new universe, because the library at IIT is so well equipped, as compared to your school libraries and stuff like that. So there wasn't any kind of stuff that I did not read, whether it's psychology, philosophy. By the way, my first love in high school was not science, even though I was very good at science, clearly, in terms of exams and also in terms of my curiosity for learning everything. But my first love in school was philosophy. So I took admission, in fact, I was very keen to take admission in Rajasthan University in philosophy. But I was 16 years old, so I was subject to this pressures of parents and teachers and neighbors and society at large. They said, if you do philosophy, you will become a teacher. But I did IIT education and I still became teacher.
आज जब समाज डिग्रियों और रैंक की दौड़ में भाग रहा है, तो प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जैसे लोग हमें बताते हैं, सच्चा ज्ञान वो है जो आपको सोचने की क्षमता दे और दूसरों को सुनने की समझ। शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने का नाम नहीं होती, असल शिक्षा है सीखने की प्रक्रिया को समझना। लेकिन आजकल आईआईटी जैसे संस्थानों में भी टेस्ट, ट्यूटोरियल्स और मूल्यांकन की परंपरा धीरे धीरे खोती जा रही है। अब स्टूडेंट्स का मकसद है किसी तरह 4 साल गुजार दो। कहते हैं असली जिंदगी तो बाद में शुरू होगी, लेकिन मैं कहता हूं असली जिंदगी तो हर पल चल रही है। अगर इन 4 सालों में कुछ सीखा ही नहीं तो वो समय नहीं, एक पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि कौन सी डिजाइन आपने पढ़ी, बल्कि ये कि नए सवाल आने पर सोच कैसे करते हैं। जो डिजाइन आप पढ़ रहे हैं वो शायद फिर कभी जिंदगी में ना आए। जरूरी ये है कि अगर नया प्रॉब्लम आए तो उसकी समझ हमारे पास हो, हम समस्या को तोड़कर देख सकें, उसके टुकड़ों को पहचान सकें और फिर विभिन्न ज्ञान की शाखाओं से उसका हल निकाल सकें। एक जीवन में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, पर अगर आप दूसरों से जुड़ें तो आप कई जीवनों के अनुभवों को एक उम्र में जी सकते हैं। कभी ऋषि मुनि जीवन की गहराई में डूबे रहते थे, ध्यान, तपस्या, आत्मबोध, यही उनकी दुनिया थी। उन्होंने भीतर की यात्रा को जाना पर बाहर की दुनिया से कट गए। वो सोचते थे बाहर की दुनिया माया जाल है, लेकिन जब आप सिर्फ भीतर की दुनिया में रह जाते हैं तो समाज की जरूरतें, विज्ञान की दिशा और तकनीकी विकास सब रुक जाते हैं। और आज हमने दिशा पलट दी है, अब हम मशीनों की दौड़ में हैं। AI, डेटा, गूगल, GPT, VR, AR, हर चीज हमारे बाहर की दुनिया को तेज बना रही है, लेकिन अंदर कुछ सूख रहा है। हम अब अंदर को भूलने लगे हैं, सिर्फ बाहर भाग रहे हैं, और यही वो असंतुलन है जिससे सभ्यता डगमगाती है। कभी बाहर को नकारने से रुकी, आज भीतर को भूलने से फिसल रही है। जीवन का सूत्र संतुलन है, वो संतुलन जो ऋषियों के ध्यान और वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला के बीच से निकलता है, जहां मन और मशीन, आत्मा और एल्गोरिथम दोनों एक ही यात्रा में साथ चलें। अगर हम एक तरफ झुकते रहेंगे, या तो मशीन बनेंगे या सन्यासी, और अगर सभ्यता को बचाना है तो हमें भीतर और बाहर दोनों को जोड़ना होगा। यही असली शिक्षा है, यही असली विकास है। लाइफ को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, एक मुस्कुराहट, एक हल्कापन, यही तो है द लाइटनेस ऑफ बीइंग। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं करियर यानी एक अच्छी जॉब, और अगर 2 रुपये ज्यादा मिल जाए तो अगली पकड़ लो। पर क्या करियर सिर्फ जॉब का नाम है? क्या वो सच में बस एक जॉब हॉपिंग सीरीज है, आज यहां कल वहां? करियर एक सीढ़ी नहीं, एक सोच है। ये आत्मविकास की एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां आप बाहर से नहीं अंदर से बदलते हैं।
Hey, what is more important? Is it journey or destination? And even young people think about it. Is it journey or destination? Actually, they want to say destination, but because it does not look very good, you know, they say journey without understanding actually what they are saying. Because you can enjoy the journey only when you are in the present. And to being in present and not dreaming about tomorrow and not regretting about yesterday is a very hard thing. Much of our mind is occupied with the experiences of yesteryears. Much of our mind is occupied with the dreams and desires of tomorrow. So very little time for the present. And so anyway, people say it's journey which is important, not destination, is because they have been told to tell that, you know, to look respectable. But I tell them it's neither journey nor destination which is important. It is the company. Company is very important because it defines both the journey and destination. Then they say, oh, yeah, okay, this is something new. They say, yeah, this company is very important. Then I, as a joke, I point out, is the company paying for the journey, which is important. And so that is a little twist in the tale. And with this tale, I want to illustrate that the role of lightness of being and humor in life is very important. So you never take your life seriously. Your life actually has very little meaning. As an individual's life has very little meaning. It is the meaning we give ourselves to our lives. But outside of it, you know, billions of people have lived. They have all come and gone. This includes everybody from Alexander the Great to people who are not so great and so on. It has very little meaning. What brings so this meaning to life, giving extra ordinary meaning to an individual's life is actually a misunderstanding. And it leads to some negative consequences in the society. So humor is very important. Taking yourself also a little bit lightly is also another way to deal with negativity of life. I always had this sense that, hey, people say, hey, you are somebody important, you got this prize, you got this award. I always say you have to laugh at it. Anyway, all these award recognition and prizes cannot be taken individually. They are not recognition of somebody's individual brilliance and merit, even though people mistakenly believe that people who get the prize, they start thinking they are somebody great and that is why they are getting it. This is not like that. Luck plays a big part in it. At the same time, it's not luck by stars. It's not, I mean, horoscope kind of luck. What I mean is, luck is a complexity of life which we neither understand nor control. So therefore, things happen. Some, you know, if one committee was there or other committee was there, the outcome may have been entirely different. This is called luck. So we must not never believe this only because how great somebody is that we get everything in life. Luck plays a role. And second thing that plays a very big role is the contribution of other people in that what is called success. Even though they know such thing as success, but whatever is you know, normally perceived to be a success, this is 90% because of the cooperation of circumstances and people. So this is so important. Once we recognize that fact, people automatically become humble. It is not a humbleness of a politician, which is a put-on, which is a drama. I don't mean that. What I mean is, you become humble by realizing, by totally understanding that your success is not your success. This, of course, this is not true for failure. Failure is individual. So one has to own up all the failures instead of blaming other people for it. Actually, just the reverse happens. So when I'm successful, I like to say that it's because of me. When I failed, then I like to say it's because of other people or circumstances that I failed. But the reality is just the opposite of how we think about it. And so by knowing that, by having some sense of humor, even if it is dark humor, that you go through life much easier.
Sach ye hai ki career is equal to journey plus growth plus inner conviction. और उस यात्रा में सबसे बड़ी बात, कौन चल रहा है आपके साथ? कंपनी नॉट जस्ट अ कॉर्पोरेट नेम, कंपनी एज इन कंपेनियनशिप. जर्नी जरूरी है, डेस्टिनेशन भी ठीक है, पर कंपनी वो सबसे बड़ा टीचर है, क्योंकि अगर साथ अच्छा हो तो रास्ता चाहे पहाड़ी हो या रेगिस्तान, हर सफर आसान लगने लगता है. और फिर एक दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा, क्या ज्यादा जरूरी है मंजिल या यात्रा? सबने सोचा, यात्रा बोलना अच्छा लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से अधिकतर या तो बीते कल में अटके रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में खो जाते हैं. वर्तमान हमारे हाथ से फिसलता चला जाता है. असल बात यह है, साथ कौन है. कंपनी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जब साथ सही हो तो मंजिल का रास्ता भी गीत बन जाता है. और फिर एक ट्रेडमार्क मुस्कान के साथ वो पूछते हैं, तो बताओ ये कंपनी तुम्हारे सफर का खर्च भी उठा रही है क्या? ये केवल मजाक नहीं था, ये था जीवन को समझने का तरीका. जिंदगी को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना खुद एक बड़ी भूल है. कभी कभी हंस लेना, हल्केपन से जीना, यही हमारे भीतर के अंधेरे से लड़ने का असली हथियार है. और शायद यही थी उनकी सबसे बड़ी सीख. टेक लाइफ सीरियसली इनफ टू ग्रो बट लाइटली इनफ टू स्माइल. अवार्ड के बारे में पूछने पर लोग कहते हैं, आपको अवार्ड मिला है, आप महान हैं. पर मैं हमेशा हंसकर कहता हूं, इन सब में लक का भी हाथ है और सबसे ज्यादा लोगों का सहयोग. सक्सेस कभी अकेले की नहीं होती, लेकिन फेलियर उसे अपनाना जरूरी है, वो हमें सिखाते हैं. सफलता पर नम्रता और असफलता पर जिम्मेदारी ही असली परिपक्वता है. वो हमें याद दिलाते हैं कि सफलता का श्रेय साझा होता है, पर विफलता की जिम्मेदारी व्यक्तिगत होनी चाहिए. पर होता उल्टा है. सफलता पे हम कहते हैं मैंने किया, और असफलता पे वो नहीं हुआ इसलिए मैं हार गया. पर हकीकत इससे उलट है, और इसी समझ से जन्म लेती है विनम्रता. वो विनम्रता जो ड्रामा नहीं बल्कि जीवन की गहराई से आती है. इसलिए जब अगली बार आप सोचें कि क्या आपकी जिंदगी की दिशा तय हो चुकी है, तो रुकिए, सोचिए कि कहीं आप सिर्फ मंजिल की दौड़ में तो नहीं भाग रहे, या फिर आप साथ चलने वालों को भी पहचान पा रहे हैं क्योंकि जैसे प्रोफेसर शर्मा कहते हैं, जिंदगी मंजिल नहीं, यात्रा नहीं, वो साथ है जो जिंदगी को जिंदा बनाता है। आज भी 65 साल की उम्र में वो रोज पूछते हैं, ये कैसे होता है, क्यों होता है। उनके लिए हर अनुभव एक नई किताब की तरह है। यह कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं, यह एक जिज्ञासु आत्मा की है, जिसने स्कूल की बेंच से लेकर आईआईटी की लाइब्रेरी तक हर मोड़ पर सवाल पूछे, जवाब खोजे और हर दिन एक नई किताब की तरह जिंदगी को पढ़ा।